शांति। 6 अगस्त 1968 का प्रातः क्लास चल रहा था। चौथी पीच के मध्य में बात चल रही थी, भगवान को शिव कहा जाता है। ये ब्रह्मा तो शरीरधारी है, शरीरधारी का नाम ब्रह्मा है। इनको हम दादा कहते हैं। ये ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। वो है बाप शिव और ये है दादा ब्रह्मा। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बहुत जन्म कितने? 84। और 84 का अंत भी कौन सा हुआ? जब 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म बताया इनका, ये नहीं बताया कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। और ये है उनका रथ है। उनका माने किनका है? और यह उनका रथ है। भविष्य की ओर इशारा किया, जो पार्ट भविष्य में प्ले होने वाला है, जिस रथ द्वारा बाप बैठ नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा नहीं, मां नहीं, बाप बैठ नॉलेज देते हैं। वो रथ उनका है। बाकी गीता में जो घोड़े गाड़ी आदि बैठ दिखाई है, वो सभी झूठ है। गीता में मुख पृष्ठ पर रथ दिखाया है, रथ में रथी बैठा अर्जुन दिखाया है और रथी का साथ देने वाला सारथी, जो रथ को चलाने वाला है, वो भगवान दिखाया है। परंतु भगवान कृष्ण को बताई दिए है। और वो कृष्ण भगवान 4 घोड़ों की गाड़ी की लगाम को अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। लगाम हुई बुद्धि रूपी लगाम, मन बुद्धि को लगाम दिया जाता है। वास्तव में स्थूल बातें कुछ है ही नहीं। हाँ, गीता में कुछ अक्षर ठीक हैं, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो गीता के वाक्यों को समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। गीता तुम सुनते तो सभी हो, फिर भूल जाते हो, क्योंकि अंतर्मुख तो कोई है ही नहीं। बहिर्मुख होकर के बाहर की दुनिया में उसके अर्थ लगाते हैं और सभी बाहर मुखी हैं। बाप समझाए रहे हैं तो भी बंबई के बच्चों को याद करके समझाए रहे हैं। क्योंकि वहां बंबई में बच्चे सर्विस कर रहे हैं, म्यूजियम व प्रदर्शनी में तुम बच्चे कितना समझाते हो, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि तमो प्रधान है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, देवी देवता धर्म जहां से बहुत हिंदू धर्म में चले गए हैं, ये है अपवित्र धर्म। देवी देवता सनातन धर्म है पवित्र, कितना फर्क हो जाता है। जब विश्व में सुख शांति थी तो पारस बुद्धि थी, अभी तो पत्थर बुद्धि है, कितनी अशांति है। इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी समझानी चाहिए कि कैसे भक्ति करने से दुर्गति होती है। फिर बाप आकर अंत में सदगति देते हैं, और सदगति देने के लिए भी उनको आना पड़ता है। हाहाकार के बाद होगी जय जयकार। तुम चाहते भी हो विश्व में जय जयकार हो जावे, सो जय जयकार अभी होना है। तुम्हारे में भी सबकी बुद्धि में ये धारणा नहीं होती है कि जय जयकार जरूर होनी है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के कोई बहुत मुश्किल सुनते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, परंतु खुद ही अशांत हैं। वो शांति स्थापन कैसे करेंगे? सुख शांति की स्थापना तो वो ही कर सकता है जो सदैव शांति धाम का वासी है, जो अशांति में खुद ही रहते हैं, औरों को भी अशांत करते हैं, धम चक्कर मचाते हैं, वो कैसे शांति स्थापन करेंगे और वो क्या वर्षा पावेंगे? अपन को साहबजादे समझे तो वो नशा चढ़े। तो अपने दिल से पूछना है, इस समय तो कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। ये दादा भी कहते हैं मैं पुरुषार्थी हूं, संपन्न नहीं है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, और पढ़ाने वाला एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, बाकी तो सभी हैं देहधारी मनुष्य। बाबा बार बार कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करते रहो। मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, ये बात अंदर में पक्का याद रखना है। अजपा जाप है, मुख से कोई शिव शिव या राम राम जपना नहीं है। पहले पहले अपन को आत्मा समझो तो बाप याद आवेगा। देह अभिमान में आने से लून पानी होते रहते हैं, अपना ही अकल्याण कर बैठेंगे। जो समझाने वाली टीचर है उनको भी अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए, प्यार से सभी की संभाल करनी चाहिए। तो वो भी खुश होंगे, सर्विस में मदद करते रहेंगे, नहीं तो रंज होते रहेंगे। और गुण भी धारण करने हैं, चार्ट रखने से तुमको सभी मालूम पड़ेगा, बाप जानते हैं जो कल पहले हुआ था वो ही होता रहेगा, बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं, कोई समय किस में भूत आता है तुम चुप करके बाप की याद में रहेंगे तो उनका भूत भी भाग जाएगा। मूल बात है मन मना भव, माम एकम याद करो तो सब प्रकार के भूत भाग जाएंगे। बाप तो आए ही हैं भूतों को भगाने के लिए, मैं आकर के पावन बनाने का रास्ता बताता हूं। जो पावन देवताएं होते हैं उनको भूत नहीं कहेंगे। अभी मैं तुमको अंधों की लाठी बनकर के रास्ता बताने आया हूं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये एक छोटा सा रात्रि क्लास है, छह आठ अड़सठ का। ज्ञान बहुत सहज भी है, समझने के लिए भी सहज है और समझाने के लिए भी सहज है। विश्व में शांति पर कितना समझाया है और समझा करके लिखाया भी है। अगर संगम पर खड़े रहें, क्योंकि मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ये संगम युग है, संगम पर खड़ा हो जावे तो देखा जाए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है, गति और सदगति सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को गति सदगति अर्थात सुख और शांति देता हूं। एक तरफ है शांति और दूसरी तरफ है अशांति, एक तरफ है सुख और दूसरी तरफ है दुख। ये भी बाप समझाते हैं कि मैं खास भारतवासी बच्चों को शांति देने आया हूं। विश्व में शांति भी थी तो सुख भी था, गति भी थी तो सदगति भी थी। कहते ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब ये बातें समझाना तो बहुत सहज है, बाप खुद कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने वाला हूं। क्रिश्चियन भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, राजाई थी। अभी तो राजाई से जैसे नफरत आती है तो शायद डीटी राजधानी से देवान में आने से बुद्धि थरकती है, पंचायती राज जीवनों को मीठा लगता है, पांच पंचों का राज्य। बाप कहते हैं ये भारत का जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है। भारत धर्म खंड है ना, उस समय पैराडाइज था परंतु कोई को विचारों को पता नहीं, अभी बाप ही आकर के समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, मैं ही तुमको सुख और शांति देता हूं और दूसरे कोई भी धर्म पिताएं महात्माएं नहीं है जो दुनिया में सुख शांति की स्थापना करके दिखावे। मैं जो नई दुनिया स्थापन करता हूं उसमें शांति भी थी सुख भी था। अभी ये संगम है, इस संगम पर अशांति भी होती है तो शांति भी होती है, सुख भी होता है तो दुख भी होता है। अभी देखो संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं, जो फिर बाद में पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण ही 84 का चक्र खा करके फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। अभी बाप खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किए हैं, और मैंने नाम रखा है ब्रह्मा। सन्यासी भी अपने शिष्यों का नाम बदलते हैं, बाप खुद कहते हैं मैं ये वर्षा देने आया हूं। भारत स्वर्ग था तो बाकी सभी शांति धाम में थे, और दूसरे धर्मखंड वाले शांति धाम में थे ना। अभी हम ब्रह्मा द्वारा तुमको शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाता हूं।
ब्रह्मा द्वारा?
ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर द्वारा कैसे? जरूर ब्रह्मा की सोल कोई में प्रवेश करके सुखधाम की स्थापना करती है। तुमको और क्या चाहिए सिवाय शांति धाम सुखधाम के? और सन्मुख आकर के कहते हैं कि मैं तुम भारतवासियों को मालिक बनाता हूं, दूसरे धर्मखंड के मालिक नहीं बनते हैं। और धर्मखंड वालों को तो शांति धाम का बनाता हूं, उनको और क्या चाहिए? शांति और सुख, इसके सिवाय और तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम भारतवासियों को शांति का वर्षा देता हूं और विश्व की बादशाही देता हूं। जो विश्व की बादशाही देता हूं वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। और ये भी समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में कल्प कल्प प्रवेश करता हूं। ये भाग्यशाली रथ है, सो भी पुराना और वानप्रस्थ अवस्था वाला है, बहुत जन्मों के अंत में है ना। नाम तो बहुतों की फिराई देते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रख दिया क्योंकि उन्होंने दुनिया से संन्यास किया है। ये इनका राजयोग का संन्यास है तो राज ऋषि कहें। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, भारतवासियों को आकर के राज ऋषि बनाता हूं और राजयोग सिखाता हूं। राजयोग की समझानी तो बहुत सहज है। ये भी बताते हैं कि ये पुरानी तमोप्रधान दुनिया है। ये तमोप्रधान दुनिया किसने बनाई? बाप ने बनाई क्या? नहीं, ये तो मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई दुनिया है। फिर सतोप्रधान बनाना बाप का काम है। बाप है ही सदाशिव, सदैव सतोप्रधान। वो तो कभी तमोप्रधान बनता ही नहीं, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, तो फिर तमोप्रधान भी कैसे बने? जो सदैव सत्य है, आनंद स्वरूप है, वो ही सुख की सृष्टि रचते हैं। वो आते हैं तो घोर सो जरा कर देते हैं, तो जरूर घोर अंधेरे में आते होंगे। यादगार में शिवरात्रि भी मनाते हैं, कहते हैं महाशिवरात्रि। फिर उनको पता भी नहीं पड़ता है कि कब से मनाते आते हैं और कैसे आते हैं। जरूर आकर के मनुष्य रथ में नाली सुनावेंगे। उन्होंने तो 24-24 दस दस अवतार दे दिए हैं, जिनमें जानवरों के भी अवतार लिख दिए हैं। अब जानवरों को तो समझाने के लिए नहीं आऊंगा, जानवरों को ज्ञान समझने के लिए मन बुद्धि होती है क्या? जरूर मनुष्य के ही रथ में आकर के नाली सुनावेंगे। मनुष्यों को ही ज्ञान सुना करके सुधारते हैं, बिना ज्ञान के बुद्धि की सदगति तो हो ही नहीं सकती। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। वो कृष्ण पवित्रता सुख शांति स्थापन करने नहीं आता है, वो तो बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने आता हूं। और कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पहले पहले शांति देता हूं, फिर सुख भी देता हूं। तुम बच्चे सुखधाम में जावेंगे तो बाकी और धर्मखंड के सब शांति धाम चले जावेंगे। नई दुनिया को सुखधाम पैराडाइज कहा जाता है, यहां तो ये दुनिया दुखधाम है। अनेक प्रकार के दुख हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, फिर भी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से हटती नहीं। ये संगम युग है, एक तरफ है कलयुगी दुनिया और दूसरी तरफ है सतयुगी दुनिया। तो जरूर कलयुगी दुनिया खलास करके सतयुगी दुनिया स्थापन करूंगा। इस कलयुग का विनाश होना है। समझाने के लिए बनियन ट्री का भी मिसाल है, दिखाते हैं मुख्य डाल डाली और धर्मों की खड़ी हुई है, कितनी टाल टालियां बढ़ गई हैं। देवता धर्म का थुर है ही नहीं, बाकी सभी विधर्मियों का झाड़ खड़ा हुआ है। अभी बाप आकर के देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सभी टाल टालियां खलास हो जाएंगी। सत्युग है वॉइसलेस दुनिया, और उस वॉइसलेस दुनिया में एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म पिता द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। कहते हैं सभी ब्रदर्स हैं, अभी तुम सब बच्चे साहब के बच्चे, साहबजादे साहबजादियां ब्रदर्स ठहरे ना, फिर नई दुनिया में बनते हैं शाहजादे और शाहजादियां। ये बात किसी को भी समझाना बहुत सहज है, समझाने के लिए तुम सभा में भी जाकर के कह सकते हो कि हे आत्मा तुम सभी ब्रदर्स हो, तुम शरीरधारी नहीं हो, तुम सब आत्मा हो, आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को समझा जाता है, हर एक की आंखों में वो आत्मा की ज्योति चमकती है ना। मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो आंखों की ज्योति खलास हो जाती है, ये ज्योति स्वरूप आत्मा है जो दोनों आंखों के बीच में विराजमान है। वो बाप भी ब्रकुटी में विराजमान होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम फादर हूं, जो और धर्म पिताएं हैं वो महान पिताएं तो हैं, परंतु सब धर्म वाले उनको नहीं मानते हैं। उन धर्म पिताओं का भी बापों का भी बाप मैं हूं, वो धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स ने दुनिया में बादशाही कायम करनी चाहिए, सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहा, परंतु कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो सुप्रीम फादर है जो तुमको सारी दुनिया में मालिक बनाए देता है, मालिक बनाने आया है ना, कहते ही है विश्व का मालिक, बाकी तो सभी शांति धाम चले जाएंगे। ये हर 5-4 वर्ष बाद होता आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी साहब जादों को रूहानी साहब का नमस्ते, ओम शांति।
में बाबा ने कहा कि नासिक में गंदा पानी रहता है बोलते, पानी गंदा रहता है बोलते, इसको बेहद अर्थ क्या है, नासिक पानी माना तो ज्ञान जल है, ज्ञान जल गंदा रहने की बात ही नहीं रहता है, तो नासिक क्या है?
नासिक जो है कहते हैं छींक से पैदा हुआ, अब छींक आवेगी तो नाक से गंदा जल निकलेगा या अच्छा जल निकलेगा, जैसे और आवेग होते हैं, वैसे छींक भी एक आवेग है, और आवेग से जो पैदाइश होगी वो अच्छी पैदाइश नहीं हो सकती। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्रों में नासिक को भी उन्होंने तीर्थ मान लिया है, वास्तव में है ये नास्तिकता की बात।
रावण का दस शेष दस धर्मों का प्रतीका है हमारा
है,
रावण का दस शेष
हाँ
दस धर्मों का प्रतीका जो की एक मंदिर विषय में बाबा ने बताया
हाँ।
शांत धर्म का भी वो प्रतीक होना गया
है,
शांत धर्म का भी प्रतीक रहना चाहिए ना, रावण भी
राम सो रावण नहीं बनता है,
राम तो रावण बनता है बाबा
हाँ।
फिर जब रावण का जो पाठ है उसको हम बाबा के साथ लागू नहीं कर सकते ना,
दुर्गा जिसे कहते हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली जगदम्बा, वो जब तामसी बनती है तो महाकाली बन सकती है, ऐसे ही राम वाली आत्मा भी तामसी बनती है या नहीं बनती है,
बनती है।
जब तामसी बनेगी तो बच्चों के मुकाबले जास्ती तामसी बनेगी, बराबर बनेगी या कम बनेगी,
कल्याण के लिए बनते हैं ना बाबा।
हाँ जी हाँ जी,
रावण तो रावण का जो भी कर्म है वो कल्याण के तो नहीं होता है,
ड्रामा में जो कुछ भी है कल्याणकारी है, कोई के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और
बाबा देखा है कि इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को नागास्त्र पार्श्व बांध लिया, उसमें उसको पक्षीराज ने आकर के मूर्ति दिया उसको राम को, क्या राम को मूर्छित कर रहे थे क्या, फिर
नाग पास क्या है, नाग कहते हैं विकारों का रूप है नाग, जैसे विष्णु को शेष सैया दिखाई है, पुरुषार्थी जीवन में जो नाग आक्रमणकारी है पुरुषार्थ पूरा होने पर विष्णु के वो रक्षक बन जाते हैं, शंकर की बाजू में लपेटे हुए सांप दिखाए जाते हैं, मतलब शंकर का जो याद रूपी पुरुषार्थ चलता है उसमें नाग साथ ही साथ है, अलग नहीं होते, वो रक्षक के रूप में भी नहीं दिखाई गए, अगर रक्षक के रूप में दिखाया भी गया है तो सिर्फ एक नाग है जो सर के ऊपर दिखाया जाता है, बाकी तो सब नजदीकी जैसे लिपटे हुए हैं, उनसे ये साबित होता है कि ऐसे भिखारी नाग जो सदैव संग के रंग में लिपटे रहते हैं, शंकर की आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती, ऐसे ही यहां भी नाग की बात है, नाग विकारों का सूचक है, विकारों के पास में आत्मा तब बंधती है जब पुरुषार्थी जीवन है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि माया हमारे ऊपर कभी वार ही नहीं कर सकती, और वार करे भी तो हम सदैव विजयी विजयी होते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं। तो रामवाली आत्मा को भी ये नागपास दिखाया गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया आक्रमण करे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आक्रमण करे और सदा के लिए हार खा करके बैठ जाए ये बड़ी और खराब बात भी है।
और दूसरों ने आकर छुड़ाया ना राम को, राम को किसी दूसरे ने आकर के पक्षी राजा ने आकर के छुड़ाया बोलते दिखाया।
जो ऊंची स्टेज में उड़ेगा वही छुड़ाएगा
राम को,
पक्षी को ऊंची स्टेज में उड़ते हुए दिखाया जाता है। वो पक्षी रामायण में जटायु को भी दिखाया गया है, जो साहस करता है रावण से सीता को छुड़ाने का, परंतु उस पक्षी के दुर्भाग्य से ज्ञान योग के पंख ही काट दिए गए। तो जो सहयोग करना था वो नहीं कर सका। ऐसी नहीं है कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। राम वाली आत्मा ही अकेले ही स्वर्ग स्थापन कर सकती है, रामराज ही स्थापन कर सकती है, नहीं तो सहयोगी भी बनते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के जीवन काल में महाराणा प्रताप तो एक बार को हार गए, परंतु कोई न कोई ऐसा साहूकार निकल पड़ा जिसने सारी संपत्ति उनको अर्पण कर दी और दोबारा राज्य स्थापन कर दिया। तो ऐसे ही है, आत्माएं पुरुषार्थ करती है, पुरुषार्थ में कोई धीमी चाल चलता है भले बड़ा महारथी हो, कोई छोटा पुरुषार्थ भी तीव्र पुरुषार्थ में चला जाता है और सहयोगी बन जाता है। ये 63 जन्मों के पुराने हिसाब किताब है, जो शूटिंग पीरियड में टाइम टू टाइम सहयोगी या विरोधी बनते हैं।
आत्मा याद की यात्रा से याद जलाता है, आत्म पवित्र
याद की यात्रा से आत्मा
पवित्र
बनती है। हाँ बोलो बोलो।
आत्म पवित्र आवकुंडा शरीर मंदिर किसने को बाबा
क्या कह रहे
आप से छोटे हैं।
आप तेलुगु में बोल दीजिए, कोई हिंदी में कर देगा हिंदी में।
आत्मा पवित्र ना हो तो
शरीर छोड़ दिया तो
है
आत्मा
पवित्र नहीं बनी और शरीर छोड़ दिया
तो क्या होगा?
अगला जन्म लेकर फिर कुछ साठ कर सकता है।
हम पूछा था बाबा, हम पूछा अगला जन्म हम पूछा
हम कम पुरुषार्थ करेगा नहीं, तीखा पुरुषार्थ कर सकता है। राम वाली आत्मा पिछले जन्म में शरीर छोड़ देती है, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेती है ना, कम पुरुषार्थ करती है क्या? लाश से फास्ट नहीं जाती। तो कोई भी आत्मा अगर अभी शरीर छोड़ती है और संपन्न नहीं बनी, याद की यात्रा पूरी नहीं हुई,
तो जितने भी याद की यात्रा हुई है वो अगले जन्म में ऐड हो जाएगी और फिर भी उनको पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। आज के छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के कंप्यूटर में कितने तीखे हो रहे हैं, उनकी बुद्धि कितनी तीव्र बन जाती है।
राम ने तो बंदर की सेना ली है, तो बंदर सेना का हेड तो सुग्रीव है, आखिर छोटी पेड़ में सुग्रीव कौन?
सु माने सुंदर और ग्रीव माने गला, जिसका गला बहुत सुंदर है, बहुत मीठी आवाज निकालता है, नहीं पता वो कौन है, है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में मीठी मीठी बातें किसने सुनाई है? ब्रह्मा बाबा ने सुनाई, वो बंदरों का हेड है।
एडवांस के लिए ऐसा होना चाहिए
है,
जो बेसिक में है वो एडवांस दुनिया के लिए एक होना चाहिए ना ऐसा
क्या?
सुग्रीव
ऐसी आत्मा,
सुग्रीव जैसी आत्मा यहाँ भी होनी चाहिए ना, क्योंकि राम को सेना यहाँ एडवांस में लिया ना।
हाँ
तो
सुग्रीव डबल पार्ट नहीं बजा रही है, उसकी आत्मा इस समय डबल पार्ट बजा रही है, बेसिक में भी पार्ट बजा रही है और एडवांस में भी पार्ट बजा रही है। राम से महलों में मेल नहीं होता है सुग्रीव का, मेल कहाँ होता है? जंगल में। तो जहाँ ब्रह्मा बाबा महलों में रह करके पुरुषार्थ करते थे वहां मेल नहीं हुआ, मेल कहाँ हुआ? जब कांटों के जंगल में राम वाली आत्मा थी उस समय सुग्रीव से उनका मेल हुआ।
इसके बारे में बाबा ने बताया कि जो बच्चे मेरे नजदीक है वही मुझे गाने करेंगे। बाबा के नजदीक शंकर का पाठ का नजदीक तो मणिया भी है तो सांप भी है गले में, हार हार जैसे
घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत प्रसिद्ध है। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं होते, अगर अंदर का कोई हाथी परिवार का वो विरोधी बन जाए तो बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही जो अंतिम जन्म में बाप के नजदीकी बच्चे जो जन्म जन्मांतर तक नजदीकी रहे, अंतिम जन्म में माया उनके ऊपर जीत पहन लेती है और विकराल विरोधी बन जाते हैं।
बाबा कहते हैं कि मैं अंतिम 84 जन्म में आता हूँ, बोले तो 1936 में जब प्रजापिता में आया तो प्रजापिता
1936
आया और 42 में प्रजापिता कंदर जो है वो तो सिर्फ छोड़ लिया, नया वस्त्र ले लिया। तो यह वस्त्र 85 का होता है या 84 का होता है?
84वां जन्म जो है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हो, तो बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हो। तो बहुत जन्म कितने हुए? 83 को बहुत जन्म नहीं कहेंगे, 83 से भी ज्यादा 84 जन्म बहुत होते हैं। तो सन 36 में 84 जन्म पूरे हुए, पिता पिता वाली आत्मा की, और 84वें जन्म में शिव बाप ने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो बहुत जन्मों का अंत का टाइम था, उसे कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। 1936 में प्रजापिता की भी वानप्रस्थ अवस्था थी 7 साल। तो जब प्रवेश कर लिया तो नाम क्या पड़ा? मैं जब प्रवेश करता हूं तो नाम क्या पड़ता है? ब्रह्म। ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था अर्थात 7 साल में प्रवेश किया। फिर वो अवस्था कब पूरी होगी? 76 में 100 साल पूरे होते हैं। उस समय ब्रह्मा खत्म हो जाता है मृत्युलोक में। तो 36 में जिस ब्रह्मा में प्रवेश किया वो ब्रह्मा 76 में खत्म हो गया, उसका मृत्युलोक खत्म हो गया। वो आत्मा अमर लोक में अपने को ज्ञान की दुनिया में जीने वाला समझते हैं। अब ज्ञान की दुनिया उसकी खत्म हो गई, मृत्युलोक पूरा हुआ और अमर लोक शुरू हुआ। तो जब अमर लोक शुरू होता है तो वो 40 साल ऐड हो जाते हैं ब्रह्मा की आयु में, और जब 40 साल ऐड हो गए और नया जन्म शुरू हुआ तो शरीर तो वो ही रहता है। कौन सा शरीर रहता है? 85वां। लेकिन उसी शरीर के द्वारा उसको नई दुनिया में भी जाना है। जाना है या नहीं? नई दुनिया में भी जाना है। इसीलिए वो 85वां शरीर कहें या पहला शरीर कहें, नई दुनिया का वो नई दुनिया का पहला शरीर भी है और पुरानी दुनिया का अंतिम शरीर भी है। इसलिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म है, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा आर्डिनरी। 85वां जन्म नहीं कहेंगे। सत्युग त्रेता के 21 जन्मों में से फर्स्ट जन्म है।
हरेक बात धरती की भी होती है, वेद की भी होती है ना? हरेक बात धरती की भी होती है, वेद की भी होती है ना?
हाँ जी।
30x40 साइज का चित्र होना चाहिए तुम्हारे पास, बोलते बाबा कहते हैं
20x40 इंच के
ये चित्र है।
हाँ।
तो इसका बेहद बहुत क्षेत्र नहीं होता है,
तो
बेहद माना चैतन्य चित्र होता है। फिर भी तो इंच का मतलब क्या है? 30x40 इंच का साइज का
अपने तो बावन बताए छत इतने लंबे चौड़े चित्र बनाओ,
तो
ये नहीं बताया 30x40 इंच के ही बनाओ। जैसे पांडवों के चित्र छत इतने ऊंचे हैं, ऐसे ही उन चार चित्रों की लंबाई चौड़ाई छत इतनी लंबी चौड़ी करो। ये कोई निश्चित नहीं है 30x40 इंच के ही चित्र बनाए। हाँ जी, मैंने विस्तार करो, जो अंधे की आंखों अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। छोटे छोटे झुंझार चित्रों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी नजर नहीं पड़ती है। हाँ जी,
बाबा ने नेपाल में पशुपतनाथ मंदिर देखा होगा बाबा।
हाँ जी।
तो उसमें लिंग होता है या मूर्ति होती
है? लिंग है।
कर्ण शिव ने शास्त्र में दिखाते है कर्ण कौरव का नमक आया, इसलिए उस पक्ष में रहा। ऐसे बोलते हैं, लेकिन यह डाला लेकर बहुत धन बच्चों के दे दिए ना,
बहुत
धन पूर्ण धन
हाँ
दे दिए ना, बच्चों में तो गौरव का नाम का खाना उसकी संपत्ति करने का ऐसे
हाँ
यह तो दाना लेकर दाना बच्चों को बहुत दे दिया, लेकिन शास्त्रों में तो गौरव को संपत्ति करने काया
तो जो कर्ण ने अपना धन संपत्ति बच्चों को दिया वो पूर्व जन्म था या वर्तमान का जन्म है? अरे 68 से पहले जो जन्म था उस जन्म की बात है या वर्तमान जन्म की बात है? वो कौन से जन्म की बात है? पूर्व जन्म की बात है। वर्तमान में तो सूत पुत्र कहा गया है, इसका पुत्र सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को। क्या अभी वर्तमान में रथ चलाने वाला रथी कौन है? है दादा लग रहा है वो रथ चलाने वाला है अभी है? रथ को चलाने वाला कौन है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मामा बाबा को डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, वो कौन थे? सूत कहा जाता है दास दासी को, यज्ञ के आदि में कौन सी आत्माएं थी जो फर्स्ट क्लास दास दासी बन गई? राम वाली आत्मा, तो सूत पुत्र हुआ ना। और कर्ण नाम क्यों रखा है? कर्ण माने क्या होता है? स्थान। ये नाम क्यों रखा? ज्ञान वो सबसे जास्ती किसके कान सुनते थे और सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा बाबा के कान सबसे पहले सुनते थे, सबसे जास्ती सुनते थे। और सुनना सुनाना कौन से मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में होता है। तो भक्ति मार्ग के कार्य के हिसाब से उस आत्मा का नाम कर्ण रख दिया गया। इसका पुत्र था सूर्य पुत्र था। वास्तव में सूर्य कौन है? प्रजापिता।